मैं डायबिटीज का शिकार हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हूं। मुझे यह मेरे परिवार से मिली है। मेरे पिताजी को डायबिटीज है। मैं डायबिटीज का शिकार हूं। मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे डायबिटीज है। एक छोटे ऑपरेशन के पूर्व ब्लड टेस्ट से मुझे पता चला।
भारत विश्व में डायबिटीज की राजधानी है। विश्व में लगभग 150 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हैं। लगभग एक तिहाई को मालूम ही नहीं है कि वे इस रोग के शिकार हैं। डायबिटीज दुनिया में पांचवा घातक रोग है। 1987 से इसमें 45% बढ़ावा हुआ है। यह रोग रोका जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह असाध्य रोग है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें या तो शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं होता। इसके कारण शरीर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भोजन का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। हमारा शरीर भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन के पाचन से परिवर्तित ग्लूकोज हमारे रक्त में मिल जाता है। हमारे शरीर के पैनक्रियाज ग्रंथि के बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज शरीर के कोशों में प्रवेश कर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज रक्त में ही रहता है और शरीर को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती। इस स्थिति को डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज के कारण आनुवंशिक। मधुमेह रोगियों के बच्चों को भी मधुमेह हो सकता है, इसलिए यह जरूरी है जिनके परिवार में मधुमेह हो उन्हें डायबिटीज की जांच करवाते रहना चाहिए। बढ़ती उम्र। 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति में डायबिटीज की संभावना अधिक है। अधिक वजन। यदि परिवार में डायबिटीज है तो अधिक वजन वाले व्यक्तियों में इसकी संभावना अधिक है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय व्यक्तियों में इसकी संभावना अधिक होती है। नियमित कसरत और शारीरिक कार्य से इसे या तो रोका जा सकता है या फिर इसे कई वर्षों तक टाला जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली और तनाव भी ग्लूकोज के संचालन और इंसुलिन के प्रभाव को असंतुलित करते हैं। कुछ दवाइयां भी इंसुलिन उत्पादन करने वाले कोशों को खत्म कर देती हैं। वायरल इन्फेक्शन और पैनक्रियाज में सूजन के कारण हमारे शरीर के कुछ कोशों का नाश होता है, जिसमें इंसुलिन उत्पादन करने वाले कोश भी होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज। यह सामान्यतः गर्भवती महिलाओं में होता है। इन महिलाओं में भविष्य में डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। हाई बीपी और अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1 में पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल नहीं करता है। यह मुख्यतः बालकों और कम उम्र के युवक युवतियों में होता है। इसमें पीड़ित को हर रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 में या तो पैनक्रियाज में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या फिर हमारा शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के किस्से में गर्भवती स्त्री पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसके कारण उसे भविष्य में डायबिटीज की अधिक संभावना होती है। टाइप 2 डायबिटीज, यह हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ी समस्या है। ब्लड प्रेशर, रक्त में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और कमर के इर्द गिर्द बहुत चर्बी, सेब आकार के शरीर से यह सब रोग काफी जुड़े हुए हैं। टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज के मरीजों की मात्रा सर्वाधिक है और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह स्थायी रोग है। सामान्यतः यह वयस्कों में होता है, पर अब बालकों और कम उम्र के व्यक्तियों में इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है। टाइप 2 में कई व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके कुछ संकेतों को लोग उम्र की समस्या समझते हैं। इसके आम लक्षण हैं अधिक प्यास लगना, अधिक बार पेशाब जाना, थकान और सुस्ती महसूस करना, हमेशा भूख लगना, घावों में जल्दी रूज न आना, खुजली, चमड़ी में संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन स्पष्ट न दिखाई देना, धीरे धीरे शरीर का वजन बढ़ना, मूड में बार बार बदलाव आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पांव का सुन्न होना या झनझनाहट होना और यौन समस्याएं आदि। यदि आपको इसमें से कोई भी लक्षण हो, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आपके डॉक्टर आपकी संपूर्ण मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और संभवतः इन 3 सरल मेडिकल परीक्षण में से एक का परीक्षण करवाएंगे। रैंडम ब्लड शुगर, यह कमी भी शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बतलाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, डायबिटीज की जांच के लिए यह एक स्टैंडर्ड परीक्षण है। इस परीक्षण में खाना खाने के 8 घंटे के बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। यह परीक्षण पिछले 2-3 महीने में आपके रक्त में ग्लूकोज के प्रमाण को बतलाता है। यह आपके डॉक्टर को आपके शरीर में शुगर लेवल को यथासंभव सामान्य रखने के प्रयत्नों की जांच करने में मदद करता है। फास्टिंग ग्लूकोज का प्रमाण 100 मिलीग्राम के अंदर होना चाहिए। यदि यह 126 मिलीग्राम या अधिक है तो यह डायबिटीज बतलाता है। क्या टाइप 2 डायबिटीज को रोका जा सकता है? हाँ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर। इसमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, संतुलित वजन का समावेश है। इसे रोका जा सकता है, इसकी दवाई की जा सकती है, पर यदि यह एक बार हो जाए तो मिटाया नहीं जा सकता। यह असाध्य रोग है। डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं, ग्लूकोज की अधिक मात्रा के कारण ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कोषों को नुकसान हो सकता है। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा से विभिन्न रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे रक्त कणों, धमनियों और कोषों को नुकसान हो सकता है। डायबिटीज की जटिलता बढ़ाने वाले अन्य तत्व, तंबाकू, धूम्रपान, इनसे आंख, किडनी और रक्त कणों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। यदि उच्च रक्तचाप का इलाज न करवाया जाए तो रक्तवाहिनी में अवरोध बढ़ते हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक, रेटिनोपैथी और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अधिक वजन और रक्त में अधिक चर्बी से रक्त वाहिनी के किनारों पर चर्बी बढ़ती है, जिससे धमनियों में अवरोध बढ़ता है। अधिक शराब के सेवन से नसों को नुकसान बढ़ता है, उच्च रक्तचाप होता है और शरीर का वजन बढ़ता है, और साथ ही रक्त में चर्बी की मात्रा अधिक हो जाती है। डायबिटीज और आपका हृदय। कोरोनरी आर्टरीज, जो हृदय की मांसपेशियों को पोषती है, उसका सुकड़ना हृदय की रक्त वाहिनियों में अवरोध का कारण है। डायबिटीज के शिकार व्यक्तियों को रक्त वाहिनियों के सुकुड़ने के बारे में रक्त वाहिनियों के बंद होने तक पता ही नहीं चलता। अवरोध वाली धमनियों का शस्त्रक्रिया द्वारा बाईपास किया जाता है। कुछ किस्सों में बलून द्वारा खोला जाता है और उसमें स्टेंट डाल उन्हें खुला रखा जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक। डायबिटीज के शिकार व्यक्तियों को हृदय रोग की समस्याओं का अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक खतरा होता है और उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। कई किस्सों में उन्हें हृदय में दर्द का ख्याल ही नहीं आता और वे समय पर इलाज ही नहीं कर पाते। डायबिटीज और आपके गुर्दे यानी कि किडनी। डायबिटीज के रोगियों में गुर्दों, मूत्राशय और योनि मार्ग में इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। गुर्दों में डायबिटीज के कारण होने वाला नुकसान गुर्दों की फिल्टरिंग व्यवस्था में छोटी रक्त वाहिनी में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। इसके लक्षण हैं बार बार पेशाब जाना, पेशाब के समय जलन अथवा दर्द होना, गुर्दों के संक्रमण से कभी कभार कमर में दर्द भी होता है। गुर्दों के फेल होने अथवा गुर्दों को क्षति होने से रोकने के लिए जरूरी है कि जल्द ही इलाज शुरू करवाया जाए। 80% से अधिक गुर्दों को नुकसान का कारण अनियंत्रित डायबिटीज है। डायबिटीज और आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क की धमनी में अवरोध के कारण स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर चोट पहुंच सकती है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाले रक्त वहन में आंशिक अवरोध के कारण अस्थायी तौर पर आवाज, पैरालिसिस की समस्या हो सकती है और दृष्टि को नुकसान हो सकता है या फिर मतिभ्रम और कन्वल्सन हो सकते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि गर्दन के क्षेत्र की धमनियों को साफ और खुली रहे ऐसी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से लें, जिससे ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। डायबिटीज और आपकी आंखें। डायबिटीज के कारण आंख के पीछे के भाग की रक्त कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है। इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। रेटिनोपैथी के चिन्ह, दृष्टि में तैरते धब्बे, अस्पष्ट दृष्टि, धुंधली दृष्टि। हर साल आंख के डॉक्टर के पास आंखों की संपूर्ण जांच करवानी चाहिए। डायबिटीज और आपके पांव। रक्त में सतत ग्लूकोज की अधिक मात्रा के कारण पांव में तकलीफ होती है। इसके चिन्ह है टांगों का ठंडा पड़ना, सुन्न हो जाना, पांव में सुई की चुभन का एहसास, टांगों और पांव में तकलीफ होती है। डायबिटीज में पैरों की धमनियों और नसों को नुकसान हो सकता है, जिससे गैंग्रीन होने की संभावनाएं बढ़ती है और अपाहिजता आ सकती है। प्रतिदिन नियमित रूप से इतना करो, अपने पांव अच्छी तरह से धोएं और हल्के हाथों से पोंछें, क्रीम लगाएं। पांव में लालाश, सूजन, घाव, फोड़े, पस आदि समस्याओं के लिए अवलोकन करते रहें। अंगुलियों के बीच, एड़ी के इर्द गिर्द, नाखूनों के किनारों और तलवों पर नजर रखें। स्वच्छ मोजे पहने और जूतों का नाप भी सही हो। डायबिटीज ग्रस्त महिलाओं में देखा गया है कि उनके इंसुलिन की मात्रा से उनके मासिक स्राव में बदलाव आता है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा महिलाओं में अस्थायी तौर पर यौन समस्याएं खड़ी करता है। डायबिटीज के कारण योनि मार्ग में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज के कारण महिलाओं में पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत बार बार होती है। जरूरी है कि आप हमेशा आपका ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रखें। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की देखभाल के तीन अंग हैं: स्वस्थ भोजन, शारीरिक सक्रियता, जरूरी इलाज। डायबिटीज के इलाज का उद्देश्य यह है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के ग्लूकोज की मात्रा के स्तर पर रहे। ब्लड शुगर और डायबिटीज को अंकुश में रखने के लिए जरूरी है आपका वजन सही रहे। इलाज में इन मुद्दों का समावेश किया जा सकता है: भोजन का आयोजन, ग्लूकोज की मात्रा की जांच, ग्लूकोज की मात्रा में परिवर्तन को विभिन्न संकेतों से जानना, कसरत, दवा का उपयोग, इंसुलिन या गोलियां, डॉक्टर से नियमित मिलना और जांच करवाना, डायबिटीज केयर के बारे में जानकारी लेना। रक्त में ग्लूकोज की स्वजांच से व्यक्ति खुद जान सकता है कि दवा की असर कैसे हो रही है। ब्लड शुगर की जांच कब करवाएं? सुबह उठकर सबसे पहले फास्टिंग, भोजन के पहले, भोजन के 2 घंटे बाद, PPBS, सोने के समय। डायबिटीज और गोलियां। यदि खानपान और कसरत से रक्त में ग्लूकोज का प्रमाण कम नहीं होता है तब दवा लेने की जरूरत होती है, पर दवा स्वस्थ नियंत्रित भोजन का विकल्प नहीं है। यदि गोलियों का विपरीत असर मालूम पड़े तो डॉक्टर से परामर्श करें। परामर्श के बगैर दवा की मात्रा न बदलें। गर्भकाल में गोलियां लेना उचित नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में भारी गिरावट के कारण होती है। इसके संकेत है शरीर का थरथराना, चक्कर आना, भूख लगना, धड़कन बढ़ना, मुंह और होठों के आसपास जंजनाहट, कमजोरी, थकान महसूस करना, सिर दर्द। यदि इसका इलाज न किया जाए और ग्लूकोज का स्तर गिरे तो संभव है आपको मतिभ्रम, नशे जैसी अवस्था, अस्पष्ट उच्चार, नींद जैसी अवस्था जो बेहोशी में परिवर्तित हो सकती है। सामान्य कारण भोजन या नाश्ते में विलंब, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी, टैबलेट या इंसुलिन की अधिक मात्रा, बिना भोजन के शराब का सेवन, भोजन की मात्रा बढ़ाए बिना अधिक शारीरिक कार्य। हाइपोग्लाइसीमिया की रोकथाम। भोजन समय पर लें। भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें। शराब सेवन के समय नाश्ता जरूर लें, जैसे कि बिस्किट, पोहे, ब्रेड। यदि आप अधिक शारीरिक कार्य करने जा रहे हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाएं। डॉक्टरी और खुद की देखभाल में संतुलन। डायबिटीज की दवा नियमित रूप से सही मात्रा में सही समय पर लें। डॉक्टर से नियमित अंतराल पर मिलें। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की खुद जांच करें। जांच की जानकारी का रिकॉर्ड रखें। आपका ग्लूकोज का स्तर हमेशा ही सामान्य स्तर पर रखना जरूरी है। स्वस्थ भोजन और डायबिटीज। सामान्यतः डायबिटीज डाइट जैसा कुछ नहीं है, पर रक्त में ग्लूकोज के प्रमाण को अंकुश में रखने के लिए जरूरी है कि हम आहार में कुछ परिवर्तन करें। कई बार डायबिटीज ग्रस्त व्यक्तियों को यह जानकारी नहीं होती है कि उनका भोजन उनके लिए श्रेष्ठ है कि नहीं। डायबिटीज डाइट का अर्थ यह नहीं है कि आप क्या न खाएं या आप क्या कम मात्रा में खाएं, पर यह भी है कि आपके भोजन में किस पदार्थ की मात्रा अधिक हो। अच्छे खानपान के कुछ सुझाव। संतुलित आहार लें, नियमित आहार लें, उम्र के अनुसार सही वजन बनाए रखें, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषक आहार लें। अपने भोजन को 3 मुख्य भोजन और 3 अल्पाहार में बांट दें। सही मात्रा में सही समय पर भोजन लें। भोजन अवश्य लें। उपवास व्रत टालें। तेल वाले और चर्बीयुक्त पदार्थ न लें। उबालना, भाप में भोजन बनाना, सेकना, ग्रिलिंग, भुनना जैसी खाना बनाने की पद्धतियों का उपयोग करें और यह देखें कि भोजन बनाने में भोजन कम से कम चर्बीयुक्त हो। रेशेदार भोजन, गेहूं, गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा, चोकर, साबुत खाद्यान्न, सब्जी, फल और खाने वाले बीज, यह सब रेशे वाले भोजन के स्रोत हैं। जो रेशे घुलते नहीं हैं, वे वजन घटाने, कब्ज दूर करने और बड़ी आंत के कैंसर को रोकने में सहायक होते हैं। घुलनशील रेशे हमें पाचन में और ग्लूकोज को धीरे धीरे सोखने में मदद करते हैं। वे हमें कोलेस्ट्रॉल और हाई ग्लाइसेराइड कम करने में भी मदद करते हैं। फल सभी के लिए अच्छे हैं। डायबिटीज ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी फल आपको ऊर्जा, विटामिन, खनिज और फाइबर देते हैं, पर उन्हें अल्प मात्रा में लेना चाहिए। आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। दूध और दही। चर्बी मुक्त और कम चर्बी वाला दूध और दही डायबिटीज ग्रस्त व्यक्तियों और सभी के लिए बहुत अच्छा है। दूध और दही आपको ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और अन्य विटामिन और खनिज देते हैं। प्रतिदिन फैट फ्री या कम फैट वाला दूध पिएं। फैट फ्री या कम फैट वाला दही खाएं। इनमें फैट की मात्रा और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। चर्बी, तेल और मिठाइयाँ। कुछ स्वास्थ्यवर्धक तेल हैं, कैनोला, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर, डायबिटीज को अंकुश में रखने के लिए कम चर्बी वाला और कम मीठा भोजन लें। प्रतिदिन नियमित समय पर 3 बार भोजन करें। नाश्ते के विकल्प। कॉर्नफ्लेक्स के साथ थोड़े बादाम, बिना मलाई का दूध, पपीता, बिना चीनी की चाय, अंकुरित मूंग, खाखरे के साथ 1 ग्लास मलाई रहित दूध और सेब, 1 इडली, संभार, कॉफी, पपीता और 1 कटोरा दही, वेजिटेबल पराठा, बहुत कम फैट वाला दही, मलाई रहित दही।
मांसाहारी ले सकते हैं कम फैट में बना अंडा, होल व्हीट टोस्ट और फ्रूट।
दोपहर के भोजन के विकल्प। फुल्का रोटी, 2 सब्जी, रायता, 1 कटोरा दाल, हरा सलाद, छोले, तंदूरी रोटी, पालक पनीर, गाजर और पत्ता गोभी का सलाद, छाछ, कर्ड राइस, सांभार, पत्ता गोभी और ग्रेवी में मिक्स वेजिटेबल सब्जी, प्याज, गाजर और टमाटर का सलाद।
मांसाहारी ले सकते हैं फिश करी, सब्जी, हरा सलाद, रोटी, चावल और दाल।
रात्रि भोजन के विकल्प। खिचड़ी, कढ़ी, बैगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, सलाद, फूल गोभी का पराठा, दही अंकुरित मूंग का सलाद, गाजर का रायता, टमाटर का सलाद, सूजी डोसा, सांभार और चटनी, वेजिटेबल पुलाव, नमकीन लस्सी, मीट, फिश या चिकन अल्प मात्रा में, कम फैट वाला चीज या दही अल्प मात्रा में, वेजिटेबल, होल ग्रेन ब्रेड और रोल्स। इंसुलिन या अन्य कोई दवा लेते वक्त कुछ खाना जरूरी है। दो भोजन के बीच नाश्ता जरूर करें। भुने हुए चने या सोयाबीन, चना चाट, मूंग दाल चिला, सेब और लो फैट चीज, खाखरा और नमकीन लस्सी। टोस्ट के लिए होल ग्रेन ब्रेड का उपयोग करें और उस पर पीनट बटर जैसे कम फैट वाले वस्तु का उपयोग करें। भोजन में सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। कच्ची या पकी हुई सब्जी का कम से कम तेल के साथ उपयोग करें। रेशेदार भोजन के उपयोग से आपका पेट साफ रहता है। भोजन पकाने की पद्धति में कम से कम फैट का उपयोग करें। उबालने, सेकने या बेकिंग, ग्रिल जैसी पद्धतियों का उपयोग बढ़ा सकते हैं। नॉनस्टिक पैन में कम तेल में हिलाकर खाना बन सकता है।
डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सब्जियां ज्यादा खाना आवश्यक है, मगर ये सब्जियों को जब तलते हैं तो उसका नरिशमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी जगह अगर स्टीम करते हैं तो नरिशमेंट बना रहता है और कैलोरीज भी कम होती है। ख्याल ये रखना है कि जो बॉइल करते हैं उसका पानी फेंकना नहीं है, किसी भी और चीज में आप यूज कर सकते हैं।
खाना बनाने में अधिक तेल के उपयोग को टालें। अधिक मीठे और चर्बी वाले पदार्थों के भोजन के उपयोग से ब्लड शुगर और वजन को नियंत्रित रखने में दिक्कत होती है। डायबिटीज और कसरत। हालांकि नियमित कसरत सभी के लिए लाभदायी है, डायबिटीज के किस्से में व्यक्ति को स्वस्थ रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आधेड़ और अधिक उम्र वाले डायबिटीज ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। कसरत के फायदे। कसरत ब्लड शुगर का प्रमाण कम करने में मदद करती है, क्योंकि सक्रिय मांसपेशियों को ऊर्जा के तौर पर ग्लूकोज की जरूरत होती है। चर्बी को जलाकर वजन कम करती है। इससे इंसुलिन बेहतर तौर पर काम करता है और डायबिटीज नियंत्रण का काम अच्छी तरह से होता है। डायबिटीज की जटिलताओं की समस्या को कम करता है। यह हृदय और रक्त परिभ्रमण को मजबूत बनाता है। यह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।
वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग,
एरोबिक्स, गार्डनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज बाइक, वॉकिंग मशीन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। सूर्य नमस्कार। योगासन, अधिक शारीरिक कार्य करने से हमारा स्टेमिना और फिटनेस बढ़ती है। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करें। अपनी कार दूर पार्क करके निश्चित स्थान पर चलकर पहुंचे। योग और डायबिटीज। योग से डायबिटीज को खत्म नहीं किया जा सकता, पर यह है कि योग जीवन शैली में परिवर्तन में पूरक बनकर डायबिटीज को अंकुश में रखने में मदद करता है। आप अपने आप को और अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। योग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों पर दबाव डालता है, जिससे हमारे पाचन, प्रजनन और अंतःस्राव में काफी सुधार आता है। योग से हमें तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव के कारण हमारे रक्त में एड्रिनेलिन तत्व शामिल होता है, जो ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित करता है। योग इस अतिरिक्त एड्रिनेलिन को अंकुश में रख रक्त में ग्लूकोज के प्रमाण को स्थिर रखने में मदद करता है। प्राणायाम और डायबिटीज। प्राणायाम डायबिटीज को अंकुश में रखने के लिए काफी प्रभावी है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास रक्त में शुगर के स्तर को कम करता है। यह ब्लड प्रेशर और वजन को भी कम करता है। डायबिटीज संबंधित लक्षण भी काफी कम हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा भर देता है। यह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाता है। इस प्राणायाम में पेट के स्नायुओं का उपयोग किया जाता है, जो अंदरूनी अवयवों पर दबाव देता है। कसरत सावधानियां। किसी भी कसरत को धीरे से नियमित रूप से करें। कसरत जितनी भी हो उसकी मात्रा बराबर रखें। हाइपोग्लाइसीमिया को कसरत करते समय तथा उसके बाद टालने के लिए उपाय। ग्लूकोज तथा मेडिकल आई कार्ड अपने साथ रखें। ब्लड शुगर को कसरत से पहले और बाद में जांचें। कपालभाति प्राणायाम। यह सांस लेने में शक्तिदायक कसरत है, जो उदासी, चिंता, उल्टे विचारों तथा तनाव को चंद मिनटों में मिटाने में सहायक है। भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम दिमाग, बुद्धि और स्नायु तंत्र को शांत करता है। अगर ऐसा हो तो कसरत टालें। कसरत करते समय सीने में दर्द होना, अचेतन पांव, डायबिटीज संबंधी कोई भी जटिलता हो तो पहले मेडिकल जांच करवाएं। कसरत ऐसे शुरू करें। कसरत की शुरुआत धीरे धीरे करें। शुरुआत में कसरत 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे उसे आधे घंटे तक बढ़ाएं। कसरत के नुस्खे। कसरत करने से पूर्व, कसरत करते समय तथा कसरत करने के बाद डिहाइड्रेशन को टालने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी अथवा तरल पदार्थ लें। जीवन शैली में परिवर्तन कर आप डायबिटीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके मित्र बनकर रह सकते हैं।